पियर हूं अगर आपका कोई डिपार्टमेंट का रेप जवाब ही नहीं देता। हालांकि उनके पास एक पूरी टीम है, लीगल टीम है पूरी, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि एक सेशन जज मुझे नोटिस कर रहा है। नतीजा क्या निकला कि अगले 24 घंटे में उन जज साहब को सस्पेंड किया गया, ओएसडी बना के रावलपिंडी से बाहर भेज दिया गया। ये तो चीफ जस्टिस का कमाल था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, बजाय कि वो अपने जज को प्रोटेक्शन देते, और अगर गलत ऑर्डर था तो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन जज को इस तरह ट्रांसफर कर देना, तो इसका मतलब है देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। और मैं एक और बात नाजरीन को बताऊंगा कि आप चीफ जस्टिस साहब ने कराची में एड्रेस किया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजी साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी हमारे मेरे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं आई कि मेरे हमें हरासा किया जाता है। मैं उनके भी नॉलेज में लाना चाहता हूं, अब और जज कंप्लेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो देख चुके हैं कि जो कंप्लेंट करता है उसका क्या असर होता है, कि इन 6 जजेस के खिलाफ भी सोशल मीडिया पे एक पूरी कंपेन चलाई गई, मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, बाबर सत्तार साहब के पास बड़ी कंपेन मलिशियस किस्म की। हमारे यहां FIA मौजूद है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उनका, वो बताएं उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की कि किसी को पकड़ा हो कि भाई आप कौन, ये कौन लोग हैं जो कंपेन चला रहे हैं। वो कंपेन जारी है, तो इसका मतलब तो ये है, मैसेज दिया गया है कि भाई आप कोई ऐसा काम ना करें, कोई कंप्लेंट ना करें। पंजाब के जिन जजों ने कंप्लेंट की, एक ने रिजाइन दे दिया, और यहां भी अलमिया यही है कि इन एजेंसियों के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए चीफ जस्टिस उन्होंने बैठाए हुए हैं, वो चीफ जस्टिस इनके इंटरेस्ट को वॉच करते हैं और जजेस को काम भी नहीं करने देते। हमारे यहां जजेस हैं जो इंडिपेंडेंस माइंड रखते हैं और अपने जमीर के मुताबिक और आईन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, मगर उनको काम नहीं करने दिया जाता। इस मदाखलत को भी देखें, और ये ट्रांसफर ऑफ दी जजेस कोई सेक्टर कमांडर नहीं करता, ये ट्रांसफर ऑफ दी जजेस चीफ जस्टिस करते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ये कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस इज प्रीवी टू दी कॉन्स्पिरेसी। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं, ये मदाखलत कैसे शुरू हुई। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, और हमारे इंडिया में जितने केसेस थे उसकी जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में दायर करनी पड़ती थी लंदन में जाके। ये तो 49 में फेडरल कोर्ट बनी तो प्रीवी काउंसिल के मुकदमात यहां ट्रांसफर हो गए और लाहौर में सुप्रीम कोर्ट कायम की गई। तो पंजाब के जो चीफ जस्टिस थे मियां अब्दुल रशीद साहब, वो एलिवेट हुए और वो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस बने। इंतहाई बासूल इंसान, आईन और कानून को मानने वाले, और उन्हें एक अपने जो टेन्योर उनका था उन्हें बड़े ग्रेसफुल तरीके से चलाया। अब ये वो टाइम था जब नीचे से एक वैकेंसी खाली हुई सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने ऊपर आना था, उनका नाम था मुनीर, जस्टिस मुनीर साहब, वो सीनियर मोस्ट थे। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहता, तो मैं तो नीचे रहना चाहता हूं। वजह कि नीचे बड़े प्रिविलेज थे, उनके पास पूरा सूबा था, पूरे सूबे की जुडिशरी थी, जहां मर्जी मदाखलत करते उनको रोकने वाले ही नहीं था, वो रहे। ये पहली वायलेशन होगी, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी वायलेट हुआ। उसकी बजाय उन्होंने अपने दो जूनियर जज थे जस्टिस कार्नेलियस, उनको भिजवा दिया, और जस्टिस शरीफ को भिजवा दिया, वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद जब जस्टिस मियां अब्दुल रशीद साहब रिटायर हुए तो फिर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जिसका हेड गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो ब्यूरोक्रेट थे, अब उन्होंने सोचा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मुनीर साहब को ले जाया जाए। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस इनसे सीनियर थे, एक जस्टिस अबू साले मोहम्मद इकराम, ASM इकराम उनको कहते थे, बंगाल के थे वो मौजूद थे। उसके अलावा एक और जस्टिस शाहबुद्दीन थे, वो भी मौजूद थे। फिर जस्टिस कार्नेलियस भी मौजूद थे। असूली तौर पर उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनना था, और सबसे पहला चांस तो उस बंगाल के जज जो ASM इकराम थे उनका चांस था कि ही वाज़ दी सीनियर मोस्ट। अब गुलाम मोहम्मद ने आग साजिश की, उन्होंने एक लॉ मिनिस्ट्री को एक नोट भिजवाया, और वो नोट कन्वे किया गया जस्टिस अबू साले इकराम को कि जी हमें बड़ा प्रॉब्लम पेश आ रहा है मियां अब्दुल रशीद साहब की रिटायरमेंट के बाद, और हमारा प्लान ये है कि हम इंग्लैंड से एक लॉर्ड को इम्पोर्ट करें, क्योंकि हम डोमिनियन का हिस्सा है, ब्रिटिश डोमिनियन का, तो हम उन्हें लेटर लिख देते हैं कि हमें एक चीफ जस्टिस दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई कैलिबर का बंदा ही नहीं है। वो बड़े पैट्रियाटिक थे और बड़े मुहब्बे वतन, उनने इसको इंसल्ट फील किया, उसने कहा फिर हम आजाद किस लिए हुए थे। वो क्योंकि खुद कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके थे, अंग्रेज चीफ जस्टिस के नीचे नौकरी कर चुके थे, वो जानते थे अंग्रेज हमें किस तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने कहा भाई ये आप क्या करना चाहते हैं, कि आप बरतानिया से एक चीफ जस्टिस इम्पोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी यही उनकी मंशा है। फिर एक शेट्टी ने जाकर बताया कि जनाब वो दरअसल आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते, अगर आप कह दें मैं चीफ जस्टिस नहीं बनता तो फिर अब यहां से को लोकल किसी को जज को बना देंगे। ही सेक्रीफाइस, उसने कहा मुझे भले न बनाए लेकिन खुदारा बरतानिया से कोई चीफ जज न लेकर आए, ये हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। तो एएसएम अकरम साहब ने लिख दिया कि बेशक मुझे चीफ जस्टिस न बनाए, मैं सेक्रीफाइस करता हूं, और वो अपनी लिस्ट से हट गए। और फिर हुआ ये कि नीचे से मुनीर साहब को, जो अभी चौथे नंबर पे थे, लाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बना दिए गए। एक दफा तो साजिश कैसा बने, जब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए और जब आए उस वक्त जस्टिस कार्नेलियस भी मौजूद थे, जस्टिस शाहबुद्दीन भी मौजूद थे, ये उनका वो सीनियर थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नीचे से तीसरे को लाकर बना दिया गया। अब जब वो बन गए चीफ जस्टिस, अब गुलाम मोहम्मद साहब ने उनको बताया कि ये आपने हमें रीपे भी करना है। और ये वो टाइम है जब गुलाम मोहम्मद साहब ने आइन साज असेंबली को ही डिजॉल्व कर दिया, जब उसने एक बिल पास किया कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ रिट दायर की जा सकती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी की तो जान निकल गई कि हमारे खिलाफ रिटें दायर होंगी, हमें लोग अदालतों में लोग तलब करेंगे और लोग कहेंगे कि ये काम जज फलां ब्यूरोक्रेट कर नहीं रहा। तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद को कहा यह तो अदलिया की मदाखलत बढ़ जाएगी, उन्हें फौरी तौर पर पार्लियामेंट डिजॉल्व कर ली। तो वो जो असेंबली के स्पीकर थे मौली तमीजुद्दीन साहब, उन्हें सिंध की चीफ कोर्ट में जाके इसको चैलेंज किया, तो सिंध की चीफ कोर्ट के जजेस ने यूनैनिमसली उसको बहाल कर दिया पार्लियामेंट को। उन्होंने कहा यह तो बरतानिया की मलका भी बरतानिया में अपनी पार्लियामेंट डिजॉल्व नहीं कर सकती, जबकि गवर्नर जनरल तो उसका नुमाइंदा है पाकिस्तान में, उस वक्त तक हमारा डोमिनियन स्टेटस था, आप कैसे पार्लियामेंट तोड़ सकते हैं, पार्लियामेंट बहाल हो गई। तो उन्होंने फिर अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। अब गुलाम मोहम्मद कोई चांस नहीं लेना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा चांस ले लें कि वहां उनके खिलाफ को आ जाए। उन्होंने फौरन मुनीर साहब को कहा कि आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये हमारा डिसीजन रिवर्स ना हो। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं। उस वक्त वहां शाहबुद्दीन साहब भी थे, जस्टिस कार्नेलियस भी थे, और उन्होंने एक और बंगाली जज थे, उनको ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपको हम फॉर द टाइम बीइंग गवर्नर लगा दें, क्योंकि वहां हुआ ये कि 1954 में इलेक्शन हुए इस पाकिस्तान में जिसमें मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार गई, जगतू फ्रंट जीत गई, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ये गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं, हमें कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं ईस्ट बंगाल में, और उसके लिए हमें को गैर सियासी शख्सियत चाहिए। शाहबुद्दीन साहब को कहा कि हम चाहते हैं कि आप चंद दिनों के लिए वहां गवर्नरशिप टेक ओवर कर लें। उन्होंने कहा यार मैं तो गैर सियासी आदमी हूं, मेरा सियासत से क्या तलक है, मैं आई डोंट वांट टू बिकम अ गवर्नर। उनको फिर बताया गया कि पाकिस्तान की बका का मसला है, अगर हम वेस्ट पाकिस्तान से किसी को भेजेंगे तो वहां बड़ी रिजेंटमेंट होगी, आप ईस्ट पाकिस्तान के हैं, आप गैर सियासी हैं, लोग आपका एहतराम करते हैं, चंद दिनों की तो बात है, जब दोबारा इलेक्शन जब मामला सेटल हो जाएंगे तो आप वापस ही सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। इस तरह उनको वहां से निकाला गया और एक मर्जी का बेंच बना लिया गया, और उस बेंच के लिए भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपने एक सक्सेसर को सुप्रीम कोर्ट में एज एडहॉक जज लेकर आ गए, ताकि वहां उनको कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। अब वो एडहॉक जज तशरीफ ले आए और उसके बाद उन्होंने अपना वहां केस चलना शुरू हुआ, और वहां भी 1-4 से वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। जस्टिस कार्नेलियस वाज दी ओनली वन जिन्होंने इसको अपोज किया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म का डिसेंडिंग नोट लिखा कि ये पार्लियामेंट तोड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन यहां से हमारी जुडिशरी डीरेल हो गई, ये जस्टिस मुनीर की वजह से और गुलाम मोहम्मद की। उन्होंने कहा ये टोटल एक किस्म का दे बोथ वर इन एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी वायलेट हुआ और मर्जी के जजेज आए और मुनीर से फिर उन्होंने हर किस्म के फैसले करवाए जो हमारी तारीख कैसा है। फिर यही मुनीर साहब थे जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने वो तारीखी डिसीजन दिया कि जब कोई भी इनकलाब कामयाब हो जाए तो उसको, कोई भी बगावत नाकाम कामयाब हो जाए तो उसको इनकलाब तसव्वुर किया जाएगा और लेजिटिमेट हो जाएगी, और अयूब खान के एक्शन को उन्होंने लेजिटिमेट कर दी। उससे एक रास्ता खुल गया कि जब भी कोई ताले आजमा आए वो हुकूमत पे कब्जा करे, मुनीर खान की जजमेंट मौजूद है और कब्जा कर। इससे हमारे मुल्क के अंदर कब्जा ग्रुप पैदा हो गए, हर आदमी जिसके पास पावर थी, जिसके पास अथॉरिटी थी, उसने कहा कब्जा करो भाई, जमीनों पे कब्जे हो गए, और यही प्रिंसिपल लिया गया कि जी मेरे पास कब्जा है, और अदालतों से स्टे ले लिया गया, प्रिंसिपल बन गया था। मुनीर साहब बना गए थे कि जनाब वो चाहे लेजिटिमेट हो ना। और अगला अलमिया ये हुआ कि यही मुनीर साहब रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद अयूब खान के लीगल एडवाइजर बन गए। अब जो कमी वो पर्दे के पीछे बैठ के करते थे वो अब सामने करने लग गए। तो ये वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो तबाह बर्बाद कर दी गई। मैं भी एक छोटी सी मिसाल इंडिया से दूंगा कि इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में इंडिया आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था उस दौरान एक ऑर्डिनेंस जारी किया। तो उस ऑर्डिनेंस को लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। और ये जनरल प्रिंसिपल है कि ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी होता है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो। उन्होंने कहा जी इजलास चल रहा था, चाहे इमरजेंसी भी थी, पार्लियामेंट में आता डिस्कशन होती, लोगों को पता चलता कौन सा कानून। और जब दिल्ली में इस केस की समाप्त हुई तो बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, इतने लोग इकट्ठे हो गए कि कोर्ट में भी जगह नहीं थी। और उन्हें बताया रजिस्ट्रार ने, जज साहब ने पूछा ये क्या वजह इतना रश। उन्होंने कहा सर ये पब्लिक के हकूक का मैटर है और आवाम बड़े कंसर्न है इस मैटर में, बाहर बरामदों में भी लोग खड़े हैं। जज साहब ने स्टार को बुलाया और उसको कहा कि आप इस तरह करें कि एक लाउड स्पीकर लगाएं और जो स्पीकर हैं हाई कोर्ट के नीचे ग्राउंड में लगा दें ताकि जो भी लोग सुनना चाहें वो नीचे ग्राउंड में बैठ के सुने, बरामदों में ना खड़े। तो एक स्पीकर लगा दिया गया। अब देखा तो हजारों लोग नीचे जमा थे। अब कांग्रेस को पता था लाउड स्पीकर की ताकत का। इंडिया आजाद कांग्रेस ने जो करवाया ना मुस्लिम कायदे आजम की जेर क्यादत, वो बंदूकों से नहीं हुआ था, वो स्पीकर से हुआ था। उन्होंने एड्रेस किया, लोगों को बताया कि वी वांट इंडिपेंडेंस, उससे लोग मोटिवेट हुए, लोग खड़े हुए, अल्टीमेटली इंडिया आजाद हो गया। कोई वेपन नहीं इस्तेमाल हुए थे। तो उन्हें पता था, उन्होंने नेहरू को कहा कि जनाब ये तो कांग्रेस की मट्टी पलीत हो रही है। जज साहब रिमार्क्स देते हैं, लोग सुनते हैं। तो नेहरू को फौरन ख्याल आया, हालांकि नेहरू बैरिस्टर थे, नेहरू ने फौरन जज साहब को खत लिख दिया कि आप बड़े मजबूत जज हैं, हुकूमत की बड़ी सबकी हो रही है, इस केस के लिए आपने ये जो अरेंजमेंट किया कि बाहर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, नीचे हजारा का मजमा है और बाहर वो नारे भी लगा रहे हैं, आप काइंडली इसको बंद करें, सिर्फ उतने लोगों को अलाउ करें जो कोर्ट के अंदर आ सकें। जज साहब ने खत को पढ़ा और जज साहब ने खत को कोर्ट में पढ़ा। उन्होंने कहा जी हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का मकाम इंडिया में गांधी के बाद ही वॉज द सेकंड लीडर, वो कहते हैं ही वॉज द रियल बिल्डर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट। उन्होंने कहा जी उनका लेटर आ गया, वो ये चाहते हैं कि इस सिलसिले को खत्म किया जाए, लोगों को पता न लगे। उन्होंने फौरन कोर्ट में ही रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जनाब वजीर आजम ये शहरियों का हक है, हमें शहरी हमें टैक्स देते हैं, उससे हम जज बनते हैं और हम जज जो भी इंसाफ करें वो नजर आना चाहिए। ये जो हमने स्पीकर लगाया हमने को कन्वेंशन नहीं कर रहा है, हमने को इलेक्शन लड़ना है, हम लोगों को बता रहे हैं कि इंसाफ होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा कि हम कैसे इंसाफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब नेहरू साहब आप अगर कौमी नेता ना होते तो मैं आपके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई करता, क्या आपने मुझे लेटर कैसे लिखा। और उन्होंने कहा आइंदा लेटर लिखने से इजतनाब करें और किसी भी अदालत के मामले में दखल न दें।
सर बहुत शुक्रिया, आइंदा फिर मुलाकात।
थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया,
इजाजत दीजिएगा। हमसे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके डिफरेंट सेगमेंट जरूर सुनिएगा और फॉलो करने की कोशिश करें। आपके कमेंट्स से डेफिनेटली वी विल लर्न और हमारे अगले प्रोग्राम में हमें मददगार होंगे वो कमेंट्स। अभी इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दी नशियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको टेलीफोन टाउन हॉल में शामिल होने की दावत देता है। मंगल शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक शहर में कार चोरी होने के हवाले से होने वाली बहस में हिस्सा लीजिए और साथ दीजिए ब्रैम्पटन सिटी के उन इकदाम का जो वो कम्युनिटी को महफूज रखने के लिए उठा रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑटो ग्रुप के फ्री सिग्नल ब्लॉकिंग पाउच हासिल करने की मालूमात भी टेलीफोन टाउन हॉल के दौरान हासिल की जा सकती है। कॉल मौसूल करने या ऑनलाइन सुनने के लिए राब्ता कीजिए brampton.ca/engage।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे, सेल तो सिर्फ अप्रैल 20th से मई 12th तक ही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। विजिट lizascosmetics.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान ना सुनो, ट्रक जिदा का भी चलाने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
समझ नहीं आती कहाँ चले जाएं, घर वाले में हर आदमी की अपनी अपनी फरमाइश है, मगर ग्रोसरी का बिल है कि आसमान को छूने जा रहा है।
मेरी माने तो जाएं ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर, बचत बचत बचत। इस फ्राइडे जुमे को अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी, डिक्सी और दंदास की पहली लोकेशन के बाद अब सेकंड लोकेशन की शानदार ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है आपके शहर मिसिसागा में ऑन फ्राइडे मई 3rd।
ग्रैंड ओपनिंग की खुशी के मौके पर ग्रोसरी के तमाम आइटम्स और हलाल मीट पर हासिल करें जबरदस्त डिस्काउंट।
सस्ती और अच्छी ग्रोसरी के लिए अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी
एट 2560 शेपर्ड एवेन्यू मिसिसागा। कॉल 9058482747।
ओपन 7 डेज अ वीक, 10 AM to 9 PM। अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 2997466।
गाड़ी घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से रब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम, 4163022522, 302-2522।
जी सामने नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:19:03 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। ट्यूसडे का दिन है, अप्रैल की 30th एंड 15 डिग्रीज टेम्परेचर, 15, यस यू हर्ड इट राइट, 15। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बता दिया था कि भाई अब तो कल 18 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 21 है, फिर 22 है, बस अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, इंशाल्लाह। न्यूज की तरफ ले चलेंगे आपको। न्यूज, दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे, ओपन माइक कैफे आपको मिलेगा 1310 डंडास स्ट्रीट, डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर इन मिस्टर सागा या मिसेस सागा कह रहे, दोनों एक ही रिश्ते हैं। ओपन माइक कैफे पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो आपने तो आप पहुंच जाइए ओपन माइक कैफे में, 416-526-6800 इनका फोन नंबर है। ईस्ट एंड में साहब आपने अगर ग्रोसरी करनी हो तो आप पहुंच जाइए बटाला सुपरमार्केट पर, बटाला सुपरमार्केट आपको मिलेगा 200 मार्कम रोड, मार्कम और एग्लिंडन के कॉर्नर पर। बटाला हलाल मीट, चिकन, लैम, बीफ वगैरह जो भी चाहिए, इसके अलावा ग्रोसरी आइटम्स में जो भी चाहिए हर चीज पे सेल लगी हुई है। बटाला सुपर मार्केट 416-264-3111 इनका फोन नंबर है। डॉक्टर नाजिया रहमान, हमारी और आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम बिकॉज टू लोकेशन बोथ ऑफ देम आर इन ब्रैम्पटन। कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर डॉक्टर साहब कहती है, मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं आपको, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड इजी पेमेंट ऑप्शंस। डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 इनका फोन नंबर है। इसके साथ साथ सब अगर आपको या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी आ गई हो या सुनने में कमी आ रही हो तो आप फौरी तौर पर हेयर मैक्स के शिराज से कांटेक्ट कर लें। शिराज रहीम दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, एक टोरंटो में एक मिसेज सागा में। हेयर मैक्स शिराज रहीम का फोन नंबर है 416-792-8792, वेरी इजी नंबर 416-792-8792 पे आप इनसे फोन कीजिए और जो हेयरिंग टेस्ट है साजो आवाज का हवाला देने पर एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा, सब और क्या चाहिए। लीजिए साहब बात कीजिए हेयर मैक्स के शिराज से 416-792-8792 पर। शाजी जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, पूरी दुनिया की सैर कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं सही में बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो आपने बड़ी ओरिजिनल किस्म की जैकेटें लगाई हुई हैं।
ये इज टोरंटो डे।
ओह वाह, क्या बात है।
टोरंटो डे एंड beloved
our beloved
Toronto Maple Leafs are playing.
Oh,
they are trailing, yes, 3-1.
But क्या हुआ,
it's not the end of it yet.
Yeah.
This is not the
end. नहीं, 83 में उन्होंने जो 3 जीतनी थी वो जीत ली है, बस अब उनका, अब 80 हारनी है उन्होंने, ठंड रखे बिल्कुल।
जितने टोरंटो के फैंस हैं, अगर शाजिया का एड्रेस आपको चाहिए तो मैं आपको दूंगा जरूर
कंबल परेड के लिए
और कंबल भी प्रोवाइड करूंगा मैं।
हाँ, बोरी भी, बोरी भी देंगे,
कुट आपने लानी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ऑल द टोरंटो फैंस, नॉट टू वरी अबाउट इट, दिस इज टोरंटो। पहले उन्होंने दो तीन गेम दे दिए उनको, तीन गेम, चलो तुम तीन गेम जीत जाओ, हम अगले तीन गेम जीतेंगे।
हो
यू गो,
ठीक है जी, ठीक है भाई। बहरहाल जी, मेरी बात सुने, देखें आप लोग जो है ना मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं जल नहीं रही हूँ। है आपकी तरह का एक बंदा था ना, तो वो जो है वो मासूम था बहुत, बीवी ने, हाँ जलता है तो जलने दे,
जलने दे,
हाँ जी,
आंसू ना बहा,
फरियाद ना कर,
फरियाद ना कर।
बस आपकी तरह का एक मासूम था ना, वो ना आंसू बह रहा था ना फरियाद कर रहा था, बीवी ने इतना तंग किया, आखिरकार उसका जो है दिल का उसको अटैक आया और वो जो है वो मर गया बेचारा। हाँ अटैक आया, वो मरा नहीं था पूरी तरह, मगर घर वाली ने कहा उठाओ भाई इसको लेके जाओ जो है शमशान में, इसको जलाओ चलाओ। तो वो जब उसको लेके जा रहे थे तो वो खड़ा हो गया, उसने देखा जब उसका बेटा जो है ना उसको कंधे पे लेके जाता, उसने कहा भाई ये तू क्या कर रहा है, जिंदगी में तेरी माँ ने जलाया, अब तू मुझे जलाने जा रहा है, मरना कैंसिल, मैं नहीं मर रहा, दोनों जगह नहीं जल सकता भाई मैं। देख ले आप कितने मासूमों को जला रही हैं ये औरतें हैं।
देखो, देखो
बहुत खराब है, मुझे जरा नहीं पसंद,
बड़े जर, मुझे भी,
हाँ जरा नहीं, औरतें नहीं आपको औरतें पसंद है, आपको लेडीज बहुत पसंद है पर मुझे जरा नहीं पसंद।
देखें ये,
हाँ
ये मैंने पहला ये,
हाँ
फील सो गुड,
हाँ जी,
फील सो गुड टू बी वेयरिंग,
हाँ हाँ, ये आप मुझे पता ही ऐसे कर करके ना जरा ये शाहरुख खान वाला स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना करें आप, शाहरुख खान जो है रहने दें, ना ही बने तो अच्छा है।
Okay, man. Okay.
Yes.
अबे पूरा पूरा
ये
ये यस ये देखे ना
हाँ 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 ये जो स्टाइल है ना ये थोड़ा सा ये ऐसे करके चेहरे वाला
नहीं फिर वो ऐसा फिर मामला खराब हो जाएगा ऐसा मामला खराब हो जाएगा
हाँ
सीधा वाला सीधा
हाँ सीधा वाला लेकिन ये सीधे वाला जो है ना ये भी सीधे वाले भी आपकी तरह के सीधे नहीं करते ये सीधे वाले का भी मतलब है आ गले लग जा तो ये आप गलत सिग्नल दे रहे हैं
नो जी
अच्छा अच्छा
आज तो मेपल लीफ को गले लगा लगा के हम करें
चपेटे मारेंगे अच्छा अच्छा
एक वर्ड सुनाओ आपने इसको कहते हैं आई जी एन ओ आर ई
इग्नोर
आई जी एन ओ आर ई
ये इंडिया की कौन सी सिटी है इग्नोर
शाजिया जी को इग्नोर करेंगे जो भी ऐसी बातें करेगा अगेंस्ट टोरंटो मेपल लीफ्स
उसको हम गोली मार देंगे
फौरी तौर जी बाद करेंगे इनका उसूर क्या था वो बाद में की बात
हाँ, पहले गोली मारेंगे कोई बात नहीं मजे देंगे मुझे बार मिलो आज आप आज मुझे बार मिले आप अच्छा जी जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल बड़े अच्छे लोग हैं 1400 लोगों की इन्होंने जनाब बड़ी स्पेस बना दी है अगर आपको अपना खुद का प्रोग्राम करना है या कि अपना कॉर्पोरेट कोई प्रोग्राम करना है पर्सनल करने हैं जो भी आपको इवेंट्स करने हैं आप कर सकते हैं 2935 व्यू रोड मिसिसागा के अंदर लोकेटेड है और 32 रूम लग्जरी होटल है और आप जो है यहां पे अपनी हर तरह के इवेंट्स होल्ड कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल जो हॉल्स हैं इनके इसके अंदर इसके अलावा जनाब मलिक लॉ ऑफिस आप इनके पास जाएं जो भी आपको कोई कानूनी सुविधाएं चाहिए तो आप मोहम्मद अतीक मलिक साहब के पास जा सकते हैं इनका बड़ा लंबा जो है एक्सपीरियंस है जो ये सारी लॉ की आपको सर्विसेज देते हैं इनका नंबर है 9052991
कितना लंबा है
4455 इतना लंबा कि कानून के हाथ इन तक नहीं पहुंच सकते
ओके मैं समझा 6 फुट 5 इंच
हाँ नहीं 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 ये बस कानून के साथ खेलते हैं तो इसलिए कानून के लंबे हाथ तक भी इनके तक नहीं पहुंच सकते हाँ जी हाँ जी मत भाई भाई ये
technical,
बड़ी टेक्निकल बातें हैं और ये बड़े ज्ञान की बातें हैं और ये बड़े जो है ना ये इंटेल कचूल किस्म की बातें हैं ये आम लोगों की समझ में नहीं आ सकती
मैं वही समझ रहा
हूँ हाँ समझने की
कोशिश तो करते हैं
हाँ हाँ कोशिश कर लें ठीक है और जनाब जो है आपने अगर ओरिजिनल बिल्कुल खूबसूरत शैंपेन कलर के अगर लेने हैं अप्लायंसेज तो आपको जाना पड़ेगा सुल्तान भाई के पास ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे उनके पास जाएं वहां पे उनके पास बहुत जबरदस्त डील्स होती हैं असल में जो आपको ओरिजिनल प्राइस है ना मार्केट में जो मिल रही है उससे बहुत कम प्राइस पे आपको चीज मिलती है 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट पे इनका नंबर है 9054502828 और इसके अलावा अगर आपके दंद पीले पै गए हैं और या खराब हो गए हैं या कीड़े उसमें आ गए हैं बेतहाशा खाना खाने की वजह से तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं डॉक्टर नाजिया जो है बड़ी प्यारी डॉक्टर है और वैसे भी अगर आपको कोई क्राउन्स या ब्रिजेस या कुछ चाहिए तो डॉक्टर नाजिया रहमान आपको बहुत सारी सर्विसेज दे सकती हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं इनका जो दो इनके जो हैं वो क्लिनिक्स हैं और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9058721100 एक तो आपके इधर जो है मिसेस सागा में है और एक ब्रैम्पटन में है यानी सारी जगह जहां पे हमारे जो है देसी बंदे रहते हैं तो मैं मिसेस सागा जो है उसके अंदर आपको मिलेगा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट स्वीट E103 में और ब्रैम्पटन के अंदर जो है आप अगर जाएंगे तो वहां पे भी L6Y के ऊपर इनका एक है क्लिनिक तो आप जाएं और बहुत सारी आपको ना मिलती हैं सर्विसेज वो कहते हैं कि हम किड्स का फ्री ट्रीटमेंट उनको देते हैं और अब कौन सा वाला फ्री है ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि वो हिप में कवर्ड है नहीं है कैसा है क्या है
वो आप मुझे ना आप जाएंगे तो रेफर करना पड़ेगा आई स्पेशलिस्ट के पास है ना जी
हाँ हाँ
तो आमिर वो दोबारा देगा वो 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट सामने लिखा हुआ है आपको E104
हाँ
वो आप पढ़ रही हैं उसको E103
स्वीट E103 मैंने बोला अच्छा 3 नहीं है 104 है
okay. वो हो गया ना ये
हाँ.
टेस्ट की पहली आंखों की टेस्ट की
आहो आहो
और इसके बाद फिर मिसागा रोड फाइनेंशियल ड्राइव कहां पर है ये
हाँ ब्रैम्पटन में
हाँ आपने क्या कहा
जज्बात में कभी कभी चीजें ऐसे निकल जाती हैं हमारे दिल जरा समझा करो
हम कह कुछ रहे हैं सोच कुछ और रहे हैं ना जी
चलो कोई गलती फेर की होया चलो ब्रैम तो टन में है जी ये सारा कुछ डॉक्टर नाजियर है। ओ जी मैंने फोन नंबर तो सही दिया है ना 9058721100 मैंने नंबर में सही दिया है।
फोन करे खुद ही मालूम करो।
हाँ खुद ही मालूम करो मतलब मैं सारा कुछ उसी दस रहा थोनू कुछ खुद भी कम कर लो कोई अपनी उंगलियां खुद भी कोई तकलीफ दे लो है तो सारा कुछ हमने आपको नहीं बताना ठीक है जी। अच्छा जी अच्छा जनाब आज स्टैट्स से कनाडा की बड़ी जबरदस्त खबर आई है और उन्होंने कहा जी वाह क्या कमाल का ग्रोथ दिखाया है कनाडा से 0.2% से रियल जीडीपी ऊपर गई है फरवरी के महीने में और नथिंग रियली तो ये जो ग्रोथ है वो कहते हैं जी 0.5% जो गेन था वो जनवरी के महीने में भी आया था और वो कहते हैं जी कि मार्च में भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये ऊपर शायद जा सकता है या अनचेंज्ड जो है वो भी रह सकता है। तो वो कहते हैं जी कि जिन सर्विसेज में तेजी आई थी वो सर्विस इंडस्ट्रीज थी जिसमें 0.2% ऊपर गई थी चीजें क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन था और जो वेयर हाउसिंग थी उसके अंदर थोड़ी सी तेजी देखी गई थी। गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो अनचेंज रही हैं जिसके के अंदर माइनिंग क्वेरिंग ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन सेक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। यूटिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं वो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो जो हैं काफी उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि 20 में से जो 12 सेक्टर्स थे सिर्फ उनके अंदर इंक्रीज देखा गया था यानी ग्रोथ देखी गई थी फरवरी के महीने में। तो बड़ी जी उन्होंने अंदर की खबर दी है जो आपको नहीं पता थी जो मैंने भी आपको बताई है पता चल गया जी। अच्छा जी ठीक है। आज हमारी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड साहिबा उन्होंने आज एक बिल पेश किया है जिसके के अंदर वो कहते हैं जी कि हम एक रेंज ऑफ मेजर्स लाना चाहते हैं जो कि अभी आपको पता ही है कि अप्रैल 16 को जो फेडरल बजट आया था उसके अंदर इन लोगों ने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी तो उस सिलसिले में ये कहते हैं लेकिन ये जो चेंजेस की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हम एक लेजिस्लेशन ला रहे हैं इसके अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो शामिल नहीं है। उसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में हम वो सेपरेटली प्रपोज करेंगे। तो अभी ये जो टेबल करना चाह रही है उसमें उसका नाम दिया इन्होंने वेज एंड मीन्स मोशंस। वेज एंड मीन्स मोशन जो है ये हाउस ऑफ कॉमन्स में लाएंगे। ये 633 पेज जो है डॉक्यूमेंट है जो टैक्सेस के ऊपर और लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं उनके ऊपर है और इस बिल का वो नाम दे रही हैं बजट इम्प्लीमेंटेशन एक्ट 2024 और इसमें वो कह रही हैं जी कि अगर जो एमपीज जो हैं उन्होंने अलाउ किया तो फिर हम ये दूसरा वाला जो है लेजिस्लेशन वो भी लेकर आएंगे। अलबत्ता यही जो अभी मैंने आपसे बात की है कि इसके अंदर जो कैपिटल गेन्स टैक्स था वो मिसिंग था तो उसमें आज इनसे पूछा गया कि भई आप वो बाद में तो लाएंगे लेकिन उसको आपने मिसिंग इसके अंदर क्यों रहने दिया है। तो उन्होंने कहा जी कि असल में उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं ये जो कैपिटल टैक्स गेन्स टैक्स जो था इसके ऊपर आपको पता ही है वो कह रहे थे कि हम इसको इंक्रीज करेंगे $19.3 billion तक इन द नेक्स्ट 5 years तो फ्रॉम 50% to 67% लेकिन ये कह रहे थे कि सिर्फ हाई नेटवर्थ जो लोग हैं जो कि $250,000 से ज्यादा कमाते हैं उसके ऊपर हम ये लगाएंगे और कॉरपोरेशन और ट्रस्ट पे लाएंगे तो इसके ऊपर डिबेट करना ज्यादा बनता है। एज अ रिजल्ट इसके साथ उसको क्लब नहीं किया जा सकता जो कि अब हम जो है ये बिल लेकर आ रहे हैं तो बहरहाल काफी कंफ्यूजन है।
चांसेस दैट वो जो इन्होंने रेज किया है ना कैपिटल गेन क्योंकि दैट इज अ वेरी अनपॉपुलर वेरी अनपॉपुलर
जी जी जी
तो अगर उस पर अलग से डिबेट करेंगे तो हो सकता है कि उसको फिर दोबारा से
रिवाइज कर सकते हैं जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आज ये बहरहाल बहुत कंफ्यूजन है अभी भी जब से इन्होंने बजट दिया है ये बहुत ज्यादा खुद भी फेडरल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज लगती है क्योंकि हर वक्त ये डिबेट उस पर कर रही है पहले कह रही है कि हमने बहुत सारी गुडीज लाए हैं और अब उनके ऊपर जो है हौले हौले वो जो बात हो रही है तो उसमें कंफ्यूजन है इनके बीच में भी कंफ्यूजन है लोग तो बेचारे कंफ्यूज हैं। डकफोर्ड साहब जो है जी उन्होंने अब अनाउंस आज किया है कि हम कंस्ट्रक्शन जो है हाईवे 413 के ऊपर 2025 में हम शुरू कर देंगे। आपको पता ही है कि इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा एतराज था उन्होंने कहा था जी कि इसका अंडर इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट जो है हम इसको असेस करेंगे कि कहीं एनवायरमेंट के ऊपर इसका असर तो नहीं है लेकिन अब इसको लग रहा है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने इनको गो अहेड दे दिया और उसी की अनाउंसमेंट जो है ये आज कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि बाय मिड में हम होस्ट करेंगे एक मार्केट जिसमें कि हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसके साथ बैठ के एक डिस्कशन करेंगे ताकि इसको आगे लेके जाया जाए। ये जो हाईवे 413 है ये 6 lane 52 kilometer हाईवे जो है ये बनाना चाहते हैं और ये बड़ा एक मेजर फोर्ड साहब का कैंपेन प्रॉमिस था जो कि ये पूरा करना चाहते थे। ये रूट जो है ये रन करेगा हॉल्टन एंड यॉर्क रीजन के बीच में और ये कनेक्ट करेगा हाईवेज 401, 407 और 410 को और गवर्नमेंट के मुताबिक यानी कि ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के मुताबिक लोगों का 30 मिनट्स जो है इससे बचेगा। जीटीए और हैमिल्टन के अंदर जो बहुत ज्यादा ये ट्रैफिक का ग्रिड लॉक है इसको भी कमी करने में ये जो हाईवे है ये मदद करेगी।
टोरंटो इज अ वेरी रिनाउंड सिटी इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड क्लास सिटी है और यहाँ पर ऐसे हाईवेज का मस्ट है, होना मस्ट है इस पे।
जी जी जी।
एंड नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी और एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज इसके अंदर तो लिबरल एंड कंजर्वेटिव दोनों है, फेडरल गवर्नमेंट लिबरल की है एंड प्रोविंशियल जो है वो डग फोर्ट साहब की है, तो ये मिल के कर रहे हैं तो इसमें कोई पार्टी का तो ताल्लुक है ही नहीं। मगर 401, 407, 410 को मिलाना और इतना 52 किलोमीटर का हाईवे आई थिंक वी डेस्परेटली नीड इट।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आजकल में आप अगर गए हैं डाउन टाउन टोरंटो में तो आप 2 घंटे तो आप सड़क के ऊपर
आराम से
आप 2 घंटे सड़क के ऊपर हैं। तो मतलब इतनी रिनाउंड है हमारी सिटी जैसे कि माजिद भाई ने बताया, और वहां पे रो रो के ट्रैफिक चल रही है तो फायदा नहीं है। तो वही जैसे माजिद भाई ने कहा कि ये हमें बहुत डेस्परेटली चाहिए, इनफैक्ट सारे कनाडा में ही हाईवेज जो है डेस्परेटली चाहिए हैं, पता नहीं ये क्यों हाईवेज को नहीं बना रहे हैं इस तरह। आज जनाब जो एनडीपी है उसने बड़े क्वेश्चन उठाए हैं फेडरल गवर्नमेंट पे, जिन्होंने वादा किया था कि हम एक कमीशन बनाएंगे जो कि मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करेगा ग्रोसरी रिटेलर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिसेस को, और ये सारे का सारा जो है इसके ऊपर फिर हम एक्शन लेंगे। एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा था कि एक एक्शन टास्क फोर्स हम जो है बना रहे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर फिलिप शैंपेन जो थे उन्होंने लास्ट फॉल में कहा था कि गवर्नमेंट जो है इन द ऑफिस ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक डेडिकेटेड टीम बना रहा है जो कि ये ग्रोसर्स की जो सारी है एक्टिविटीज उनको मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद जो है फिर फूड की प्राइसेस को हमको इन्वेस्टिगेट करने का, और ये जो श्रिंक फ्लेशन है इसको इसकी क्या प्रैक्टिसेस है इसको अनकवर करने का और स्टेबलाइज करने का इस सेक्टर को हमको जो है वो मौका मिलेगा। अप्रैल का जो अभी बजट भी आया था अप्रैल 16 को, उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम इसके ऊपर काम करेंगे। अलबत्त एनडीपी के जो एमपी हैं फॉर एग्री फूड क्रिटिक एलिस्टर मैकग्रेगर, उन्होंने जब जिस वक्त फेडरल गवर्नमेंट से पूछा कि भई आप इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, पहले तो वो कहते हैं जी कि फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे बहुत दिनों तक तो इसका जवाब ही नहीं दिया, और उसके बाद जब इन्होंने मुझे जवाब दिया तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह की एक टास्क फोर्स बनाना और ग्रोसरी जो रिटेलर्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना इसका तो कोई मैंडेट है ही नहीं फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो एलिस्टर मैकग्रेगर जो है वो कहते हैं जी कि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट
मैंडेट चले सही है, मैंडेट है ही नहीं मगर स्टिल आप ये तो नहीं कहा उनके पास मैंडेट नहीं है, कोई हमें वॉच नहीं कर रहा है और हम प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं
जो हमारी मर्जी हम करेंगे,
मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं हमारे, एंड जब आपसे कहा जाए तो आप तीसरी पार्टी पे डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ यू एज ए ओनर ऑफ दिस बिग स्टोर्स, उस आप कुछ करें थर्ड पार्टी पे जो होलसेलर्स हैं उन पे डाल देंगे सारा।
जी बिल्कुल, तो वही वो कह रहे थे एलिस्टर मैकग्रेगर के मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और मुझे बड़ा सरप्राइज भी मैं हुआ कि जी अभी आपने अपने बजट में भी बोला है, इससे पहले आपके मिनिस्टर जो शैंपेन है उन्होंने भी वादा किया था, तो फिर अभी तक बनाई क्यों नहीं है वो टीम, वो टास्क फोर्स बनाई क्यों नहीं है? और वो क्योंकि जो फिलिप शैंपेन थे वो तो बात कर रहे थे ग्रोसरी वालों से, तो वो अगर कर रहे हैं तो फिर ये टास्क फोर्स का वादा क्यों किया, और अगर टास्क फोर्स का वादा किया था तो फिर उसने अभी तक काम क्यों नहीं शुरू किया? तो आज वही जो है वो उसी बात के ऊपर
समवन हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर।
जी जी, तो वो उसके बारे में वो पूछ रहे थे। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट आपको पता ही है कि उसने एक फ्री डेंटल केयर प्रोग्राम जो था वो ऑफर किया था, और उन्होंने कहा था इसमें मिलियंस ऑफ जो गरीब कैनेडियंस हैं उसका फायदा उठाएंगे। तो हिसाब लगाया गया था कि 1.7 मिलियन लोग जो थे उन्होंने ये साइन अप किया था, लेकिन इसमें अब मुश्किल ये है कि सारे कनाडा में जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने साइन नहीं किया है गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के लिए, और सिर्फ 5,000 डेंटिस्ट जो हैं उन्होंने साइन किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये जो गवर्नमेंट प्लान लेकर आ गई है इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन हमको समझ ही नहीं आ रही है और हमारे साथ डिटेल्स इनको डिस्कस करनी पड़ेंगी। डॉक्टर ब्रॉक निकोलुशी जो है प्रेसिडेंट हैं ऑन्टेरियो डेंटल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी कि ये डेंटिस्ट का इसके अंदर बहुत ज्यादा पेपर वर्क जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा और इसके अंदर जो फी स्ट्रक्चर है हमें नहीं पता है कि ये कैसे होएगी और चीजें जो हैं ये अभी तक हम वर्कआउट नहीं कर पाए। इसी तरह तो डॉक्टर जोएल एंटल जो थे प्रेसिडेंट और हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा डेंटल एसोसिएशन वो भी कहते हैं जी कि हमें तो अभी पूरी तरह डिटेल्स भी नहीं पता है और हेल्थ मिनिस्टर जो है फेडरल हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है वो भी कर दी है इस सिलसिले में कि जी अब ये इनको लोगों को फ्री डेंटल केयर ऑफर की जाएगी। तो डॉक्टर्स का डेंटिस्ट जो है उनका कहना है कि भाई ये चीजें तो साल हर साल लग जाती हैं एक दूसरे के साथ डिस्कशन में समझने में और ये तो महीनों के अंदर ही रोल आउट कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो हम अच्छा फेडरल गवर्नमेंट जो है और हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कहते हैं भाई कि जितनी सर्विसेज आप एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके के लिए आपने साइन अप किया है एटलीस्ट उतनी तो आप जो है सर्विसेज दो लोगों को, फिर बाकी की जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं वो आप हमारे से बात कर लो, विच इज वेरी रीजनेबल। लेकिन अब आपको पता ही है कि डॉक्टर्स तो फिर डॉक्टर्स ही है ना, तो डेंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो है दोबारा अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि कौन बंदा ये गवर्नमेंट की सुविधाएं ये वाली जो है डेंटल केयर की ले सकता है, सहूलतें ले सकता है, ये सर्विसेज ले सकता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जरा आप जाएं और वहां पे जाके आप देखें कि आप कौन एलिजिबल है इन सर्विसेज के लिए और फिर आप अपने डेंटिस्ट के साथ इस बात को डिस्कस कर सकते हैं।
इवेंचुअली एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी एलिजिबल
जी
इवेंचुअली एंड ये जो गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना और उस पर भी प्रेशर है एनडीपी का
ना जी जी,
क्योंकि एनडीपी ने भी
अलायंस में इसलिए वो गए थे अलायंस में गए थे
तो फार्मा केयर और ये जो है उसको मिला के वो कहते हैं कि इसको फौरी तौर पर
रोल आउट करें। बिल्कुल ऐसे अच्छा मजीद भाई ये जो आप अभी जिक्र कर रहे थे बहुत ही हाई एंड गाड़ियां जिनको स्टील किया गया है तो ये पूरे का पूरा एक गैंग था जिसको के बस्ट किया है और ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये स्टार्ट हुआ कि जिस वक्त एक नई मर्सिडीज बेंज जो है एक ब्रैम्पटन के प्लाजे से अभी रिसेंटली अप्रैल 9 को ये चोरी हो गई थी और उसका पीछा जो है इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे थे, वो करते करते एक बॉडी शॉप में पहुंचे एट नेदर हॉर्ट रोड के ऊपर तो वहां पे उनको पता चला जी कि बहुत सारी गाड़ियां जो है उनके पार्ट्स निकाले जा रहे हैं और उनके जो विन नंबर्स हैं उनको डिफेस किया जा रहा है और बड़े बड़े वहां पे इंजन गाड़ियों के पड़े हुए थे और पार्ट्स पड़े हुए थे। तो वो कहते हैं जी कि ये जो इनके ओरिजिनल पार्ट्स हैं गाड़ियों के ये तो ये ग्रे मार्केट में और अनऑथराइज सेलर्स को कर देते हैं और बाकी का जो ढांचा होता है गाड़ी का वो स्क्रैप मेटल यार्ड में वो लोग भेज देते हैं। ये जो 8 गाड़ियां जो हैं इन्होंने रिकवर पुलिस ने की और 4 सस्पेक्ट जो इस सिलसिले में पकड़े हैं उनकी जो वैल्यू बताई जा रही है गाड़ियों की वो है $225,000। इसके अंदर जैगुआर रेंज रोवर और सब्स और बाकी किस तरह की गाड़ियां थी जिनको के डिसमेंटल किया जा रहा था। ये जो लोग थे ये जो बंदे 4 पकड़े गए हैं ये देवर फ्रॉम मिसिसागा ब्रैम्पटन मिल्टन एंड इटोबिको और इनके ऊपर ऑल टुगेदर ईच पर्सन जो है चारों के चारों पे ईच पे 18 चार्जेस लगाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग थेफ्ट टेम्परिंग ऑल्टरिंग डिफेसिंग और मिस्चिव ओवर $5,000। तो ये जनाब बस ऑटो थेफ्ट
एटलीस्ट यू गॉट गिव क्रेडिट टू पुलिस कि वो एटलीस्ट काम कर रही है एंड बिफोर नथिंग वॉज हैपनिंग जस्ट कार स्टोलन बट यहाँ पर एटलीस्ट कुछ काम हो रहा है।
हमारे भाई जो 8 गाड़ियां उन्होंने ढूंढी है ना ढूंढो आपकी भी शायद इसमें मर्सिडीज होगी।
यू नेवर नो
जाके
देख लेते हैं
हाँ जाके देख लेते वैसे क्लेम ही डाल दें बोले ए वाली मेरी है भाई लेकिन अगर उन्होंने उसको पूरे को तोड़ नहीं दिया हुआ है ना बहुत सारी गाड़ियां उन्होंने देखी तो टूटी
बड़ा अफसोस होगा मुझे टूटी हुई गाड़ी।
हाँ 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 देखे बिल्कुल ऐसे और जनाब आज तो बस मतलब है क्या कह सकते हैं और तुम कराची नू रोंदे हो बारिशें आई हैं अभी दुबई में दुबई का हाल देखो जी बड़ा हाई फाई नंबर 7 सिटी इन द वर्ल्ड के पता नहीं नंबर 10 सिटी इन द वर्ल्ड है उधर क्या हाल हुआ है। अब जो है ये टोरंटो के जी हाईवे के ऊपर लोगों के टैर फटे हैं पॉटहोल्स की वजह से
अनरियल 401 आप जा रहे हैं 401 ईस्ट बाउंड यंग स्ट्रीट के पास जो पॉटहोल है उसमें इनको अभी तक तो 12
गाड़ियों के टायर फटे हैं जी
मगर ये कि अभी 12 इज जस्ट रिपोर्टेड वंस।
हाँ
बहुत सारे लोग जो है उनको
बेचारों ने तो रिपोर्ट को तो पता ही नहीं चला होगा पता ही नहीं चला होगा। अच्छा जी ये ओपीपी के जो सर्जेंट है कैरी श्मिट ये कहते हैं जी कि हम जिस वक्त यहां पे आए ईस्ट बाउंड जो कलेक्टर लेन थी नियर यंग स्ट्रीट उसके अंदर ये हादसा हुआ था और लोग बड़े सरप्राइज हुए पहली बार जब उनके टायर ये यहां पे फटे हैं तो वो कहते हैं जी हमने फौरन इतला दी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कि आप इधर आओ ये रिपेयर करो रोडवे जो है। तो उस सिलसिले में जो सुबह के वक्त लेफ्ट लेन थी वो सारी बंद थी लेकिन अभी जो अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है उसमें वो कह रहे हैं जी कि उसको ओपन कर दिया गया है। मतलब तुम पाकिस्तान दी सड़कों नू रो रहे हो पायन ये देखो जरा बड़ा जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री टोरंटो दुनिया का वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट सिटी और बड़ा फेमस या टोरंटो दे विच की है तमाशे मचे हुए, रोडा बंद ने सारिया, कंस्ट्रक्शन हो रही, गार्डनर का बेड़ा गर्क किया हुआ है, चार चार घंटे आप रोड के ऊपर उधर खड़े हो।
रोडो की क्या बात कर रहे हैं आप, एज सून एज यू यहाँ की जो बॉर्डर क्रॉस करें टू गो टू यूएस,
टूटी हुई सड़कें न्यूयॉर्क की,
सारी सड़कें
टूटी हुई सड़कें सारी,
डिट्रॉइट की भी, डिट्रॉइट की, बफलो की, की उधर की, आप जहाँ पे भी जाए वहां से भी एंटर हो आप राइट अवे आपको पता लग जाता है कि
हम कराची में एंटर हो गए,
अमेरिका में एंटर हो गए।
एग्जैक्टली, तो ये जनाब ये आज का जो है ना ये वाकया, ओहो, अगर मैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली को बताऊं तो दे आर गोइंग टू यू नो लाफ एट मी, झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। तो ये जनाब ऐसे है। अच्छा जनाब, रॉयटर्स की आज एक खबर है और इसराइल ने आज फिर बेतहाशा हठधर्मी दिखाते हुए, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जी चाहे ट्रूस की बात होगी, चाहे आप हमें हॉस्टेजेस देंगे या नहीं देंगे, हमने हर हाल में रफा के ऊपर जो है अटैक करना ही करना है जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो बड़ा सिंपल है जी, जिनको समझ है उनको पता ही है कि पूरे पैलेस्टाइन के ऊपर अब ये कब्जा करना चाहते हैं। और जो है ये इन्होंने कहा जी कि जब तक हम अपने ये पूरे एम नहीं हम ले लेंगे, आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम किसी की बात माने और रफा के ऊपर तो हम अटैक करेंगे। हालांकि अपेरेंटली यूएसए जो है एटलीस्ट दुनिया को मुंह दिखाने के लिए तो इनको कह रहा है इसराइल को कि भाई रफा के अंदर एंटर ना होए और उसके ऊपर अटैक ना करें। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं उन्होंने रूल आउट किया कि कोई इमरजेंसी ऑर्डर्स हम देंगे जर्मनी को कि वो अपने आर्म्स एक्सपोर्ट इसराइल को ना करें, क्योंकि एक पिटीशन लेके आए थे कुछ लॉयर्स आईसीजे में और उन्होंने कहा था कि जर्मनी को फौरन रोकें क्योंकि ये जो गाजा के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है इसराइल, ये बहुत सारे जो वेपन्स दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें कि जर्मनी नंबर वन पे है, उसको रोका जाए। उन्होंने कहा जी हम ये नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो जर्मन रिक्वेस्ट भी थी कि ये जो पिटीशन जो भी कोई बंदा लेकर आया है इसको थ्रो करें आप, तो आईसीजे ने कहा कि नहीं अब इसको हम जो है यानी कि खारिज भी नहीं कर सकते हैं, अभी हम रखेंगे इसको देखेंगे। जिस वक्त ये मामलात सारे जो हैं आईसीजे के अंदर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ एक आई थी खबर के जी ये जो कुछ इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं वो गाजा के ऊपर उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की है तो उनके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो उसके ऊपर नेतन्याहू साहब ने कहा जी कि ये जो कुछ भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और अगर हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अटैक गाजा के ऊपर करने के लिए, बम्बॉर्ड करने के लिए गाजा के ऊपर अगर कोई हमें उनको चार्ज किया गया तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। यानी अब देखें ना आप चोर ते नाले चतर हैं जी, ते वो जो है वो मानने को इसराइल तैयार ही नहीं है कि हम कुछ जो है गलत कर रहे हैं, हम उनको लग रहा है कि हम सब ठीक कर रहे हैं। यानी एक ऑक्यूपायर है, आपने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टाइन के ऊपर, आप अब उनके पहले तो आधे मुल्क पे किया, अब आप उनके पूरे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हो, 35,000 आपने उनका बंदा मार दिया है, फिर भी जो है ये ह्यूमन राइट्स के मतवाले जो हैं अंकल सैम टाइप के ये आपके साथ खड़े हुए हैं और आप जो हैं दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन भाईजान कोई ऊपर भी आपसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है उसको इतना भी ना सताओ कि फिर ऐसी हवा आए कि फिर आपको उड़ा के ले जाए, फिर आपका पता ही ना चले कि दुनिया में कभी इसराइल भी था। तो जरा होश से, होश के नाखून लें। और अंकल सैम को भी हम यही कहते हैं, अंकल सैम आप अपना गलती में बहुत गलत तरीके में अपना हिस्ट्री में आप नाम, खासतौर पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, जब जीनोसाइड का जब जब जिक्र आएगा कभी इस दुनिया में और जिस वक्त ये आप बोस्निया हर्जेगोविना के बारे में बात करेंगे या कि आप जो है ये इसराइल ने किया है जीनोसाइड ये पैलेस्टीनियंस का, तो जरूर ये जिक्र आएगा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस वक्त इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रही थी, तो क्यों अपना नाम आप जीनोसाइड वाले लोगों के साथ लिखते हैं। बहरहाल जो इस वक्त अमेरिका का हाल है, अगर आप देखें जितने वहां पे प्रोटेस्ट आए हैं बिल्कुल वही हालात इस वक्त हुए हैं जो वियतनाम वॉर के वक्त में अमरीका के हालात थे। तो बहरहाल जी पैसा भी अपना सारा जो है बेतहाशा इन्होंने बाहर भेज दिया है, तो कैसे आप सोचते हैं आपकी इकोनॉमी भी चलेगी और चीजें भी चलेंगी? आखिर फिर अगर ऑटोमन एम्पायर नहीं रही, ग्रीक एम्पायर नहीं रही, जो है वो रोमन एम्पायर नहीं रही, तो फिर आपको लगता है कि आप रहेंगे कितना जुल्म करेंगे आप? ऐसे बीबीसी की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है फिगर आउट किए हैं 5 यूनिट्स ऑफ इजरायली मिलिट्री, जिसके के बारे में उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, उधर लोगों के बच्चे मारे हैं, औरतें मारी हैं, बड़ा कुछ जो है ये जुल्म किया है। ये एक बहुत बड़ा आज का बयान है स्टेट डिपार्टमेंट का और आज दुनिया इसके ऊपर काफी हैरान हुई। अगर आप एक्स के ऊपर ट्विटर जो ट्रेंड है वो भी देख रहे हैं अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि लोग आज बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे, एक तरफ तो यूएस जो है दबादब मिलिट्री एड देता जा रहा है इसराइल को और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इनके 5 यूनिट्स जो हैं इसराइली मिलिट्री के उन्होंने बड़े ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं। अभी तक जो यूएस है उसने अपनी जो ये जो सप्लाई है वॉर मशीन के ये अभी तक रोके नहीं है, यानी कि अपने वेपन्स रोके नहीं है इसराइल को देने। आपको पता ही है कि एनुअली जो है यूएस सप्लाई करता है 3.8 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस सिस्टम्स टू इसराइल, तो उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की है कि हम इसको रोकेंगे। अलबत्ता स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है विधांत पाटिल, आज उनसे पूछा गया कि ये जो पैलेस्टीनियंस पे इतना जुल्म किया है इन्होंने उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा जी कि 5 में से जो 4 यूनिट्स हैं उनके तो खिलाफ इसराइल ने खुद ही एक्शन ले लिया है और 5वां जो यूनिट है उसके ऊपर हम जो है इनके साथ बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर विधांत पाटिल को आज बहुत खींचा वहां पे जर्नलिस्टों ने, उन्होंने कहा जी आप बोल भी रहे हैं कि इन्होंने बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, तो आपने कोई सैंक्शंस आप लगाना चाहते हो इसराइल पे, आप कोई उनके साथ सख्ती करना चाहते हो या आप अपना आर्म्स सप्लाई ही रोकना चाहते हो। अच्छा, इसके पास अब जो है विधांत पाटिल साहब के पास कोई आज जवाब नहीं था, बार बार बस ये यही कह रहा था कि हम कंसल्ट कर रहे हैं, हम एंगेज कर रहे हैं इसराइली गवर्नमेंट के साथ, हम कंसल्ट कर रहे हैं, हम एंगेज कर रहे हैं इसराइली का, बार बार बस यही वो कहते जा रहे थे कि हम उनके साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है अंडर लीही लॉ जिसको स्पॉन्सर किया था 1997 में, उस वक्त के जो सेनेटर थे पैट्रिक लीही, और उन्होंने कहा था जी कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व होएगी तो उसको इमीडिएटली जो यूएस मिलिट्री एड है वो रोक दी जाएगी। तो अगर रोक दी जाएगी तो फिर अभी तक आपने क्यों नहीं रोकी है, तो उसी के सिलसिले में आज काफी इनको जो है वो खींचा गया। लेकिन ये बार बार कह रहे थे जी हम एंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनके पास कोई जवाब इसका नहीं था। हफिंगटन पोस्ट की आज ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो यूएस प्रेसिडेंट है बाइडन साहब, उनके जो बेटे हैं हंटर बाइडन, उनके लॉयर्स जो हैं अब सू कर सकते हैं फॉक्स न्यूज को। इनके लॉयर्स जो हैं इन्होंने एक लेटर लिखा है फॉक्स न्यूज को और उसमें उन्होंने कहा जी कि आप बहुत अनलॉफुली पब्लिश कर रहे हैं ये हैक्ड इमेजेस ऑफ हंटर बाइडन, जो कि उनकी प्राइवेट फोटोज थी जो कि आप नहीं कर सकते थे, आपने उनको हैक किया और ये सारा कुछ किया और ये आप पब्लिकली अटैक कर रहे हैं कंटिन्यूसली उनके ऊपर, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर फॉक्स न्यूज ने कहा है जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड कवरेज जो है वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो एक पब्लिक फिगर है और वो पब्लिक फिगर जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है जस्टिस डिपार्टमेंट कांग्रेस, और उसको इंडाइट भी किया है 2 डिफरेंट यूएस अटॉर्नी ऑफिसर्स ने, कैलिफोर्निया और डेलावेयर ने, और उसने एडमिट भी किया है बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स। तो इसलिए हम जो है ये कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अमेंडमेंट, फॉक्स ने कहा जी कि हम उसको कवर कर रहे हैं और ये जो हाईली पब्लिसाइज इवेंट्स हैं जिसके के अंदर एफबीआई का एक इंडाइटमेंट भी शामिल है, जिसके के बारे में इन्होंने कहा जी कि उस सोर्स ने जो है इनको जो है वो बताई थी कुछ चीजें, तो वो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है। तो अगर अब हम भी बात कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, तो हम कैसे उसको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी लॉयर हैं एक हंटर बाइडन की टीना ग्लैंडियन, उन्होंने कहा है जी कि फॉक्स ये सारा कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए कर रहा है, इसमें न्यूज वर्दी कुछ भी नहीं है, यानी कि उसको डिफेम करना चाहते हैं, उसको शर्मिंदा करना चाहते हैं उसकी नंगी तस्वीरें जो हैं वो दिखा के, और इसमें न्यूज क्या है, व्हाट्स द बिग न्यूज अबाउट इट। तो ऐसे है अमेरिका के अंदर जी ओक्लाहोमा के इलाके में बहुत ज्यादा टोर्नेडोज आए हैं, उसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 30 लोग जो हैं तकरीबन वो जख्मी हैं। एक जो छोटा सा टाउन है सल्फर का जहां पे के 5,000 लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, और यहां पे इतना ये टोर्नेडो सख्त था कि जो गाड़ियां थी उड़ उड़ के हवा में जा रही थी और घरों के जो रूफ्स थे वो उड़ गए हैं बिल्कुल। ये जो 4 लोगों की डेथ हुई है इसमें एक 4 महीने का बच्चा भी शामिल था। हॉस्पिटल ने कहा है जी कि तकरीबन 100 इंजरीज हम जो है वो रिपोर्ट बड़ा जो है वो कॉशियसली कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैकड़ों ही घर हैं वहां पे ओक्लाहोमा में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं। यहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो अनाउंस की गई है ओक्लाहोमा की जो 12 काउंटीज हैं बिकॉज ऑफ सिवियर वेदर। और प्रेसिडेंट बाइडन साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि फुल फेडरल सपोर्ट जो है इनको दी जाएगी फॉर रिकवरी एफर्ट्स। व्हाइट हाउस ने जो है इनकी डिटेल्स आज एक स्टेटमेंट के अंदर भी दी हैं। तो काफी यहां पे नुकसान हुआ है लेकिन लग रहा है कि ये जो डेथ टोल है ये शायद ऊपर जाएगी क्योंकि बहुत ही खतरनाक था टोर्नेडो, गाड़ियों को उड़ा रहा था। तो आप खुद सोच सकते हैं बंदे नहीं उड़ाएगा, ये बंदे भी उड़ा उड़ा के फेंकेगा। तो ऐसे है जैसे कि हम आपको बता रहे हैं फ्राइडे से ही कि अमेरिका की बहुत सारी जो टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि उनकी जो टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं दूसरी भी जो हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट आ रहे हैं। इसी सिलसिले के अब जो प्रोटेस्ट हैं फ्रांस में भी हैं क्योंकि जाहिर है अमरीका जो है अब वो हर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फ्रांस जो है वहां पे भी टेंशन स्टूडेंट्स के बीच में टॉप यूनिवर्सिटीज में इतना बढ़ गई है कि आज तो जो है फ्रांस की गवर्नमेंट उसने राइट पुलिस को बुलाया। ये जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ साइंसेस पुट यूनिवर्सिटी पेरिस के अंदर, इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट के कुछ हिस्से हैं वहां पे इन लोगों ने एंट्रीज ब्लॉक रखी और वहां पे अपने जो है टेंट्स लगाए रखे। राइट पुलिस जो है बहरहाल उसको जब बुलाया गया तो उसने इस कैंपस के अंदर ये टेंटों वगैरह को खत्म करने की कोशिश की। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं फ्रांस के, वो जो हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ये फ्रांस की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है। वहां पे उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये जो एक्शंस हैं ये जो एक माइनॉरिटी के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं इनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक किस्म की के रूल्स और आइडियोलॉजी फ्रांस के ऊपर जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो है एंटी वॉर प्रोटेस्ट फ्रांस की दूसरी यूनिवर्सिटी जो है सॉर्बोन यूनिवर्सिटी, वहां पे उसके कैंपस में भी थे, वहां पे भी टेंट लगाए हुए थे और जो वहां पे पैलेस्टीनियन फ्लैग लहराए गए और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो स्लोगन्स लगाए गए। बर्लिन में जर्मनी के अंदर भी प्रो पैलेस्टीनियन जो कैंपर्स हैं उन्होंने तो अपने कैंप पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने लगाए हुए थे जिनको आज डिसमेंटल किया गया। स्पेन जो है उसके अंदर भी बहुत सारे मोर्चे निकले और जो जीनोसाइड चल रहा है गाजा के अंदर उसके अंदर प्रोटेस्टर्स ने उसके खिलाफ बात की। इसके अलावा इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो है वहां पे भी आज बहुत बड़ा मोर्चा निकाला स्टूडेंट्स ने। इटली के अंदर तो इतना बड़ा निकाला मोर्चा कि उसके अंदर तो उनकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ सिक्योरिटी दिखाते हुए ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको बहुत ज्यादा कंडेम करती हूं। तो यानी ये जो चीज अमेरिका से की यूनिवर्सिटियों से शुरू हुई थी या बाकी जगहों के भी दुनिया में बाकी भी फैल रही है और स्टूडेंट्स जो है बेतहाशा जो है इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पर क्योंकि अमरीका से ही चीज शुरू हुई है और उसी को फॉलो ये कर रहे हैं। तो जैसे अमरीका में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप डाइवेस्ट करें यानी कि इन्वेस्ट ना करें इसराइल के स्टूडेंट्स को यहां पे लाने में या इन यूनिवर्सिटीज में, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ना लें, आप कबूल भी ना करें और उनमें भी ना आप इन्वेस्ट करें, एक तो वो करें और ये जो चीजें हैं इनको डिस्करेज करें और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी वो प्रेशर। तो इसी तरह बाकी यूरोप में भी लोग जो हैं स्टूडेंट्स जो है प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट्स को कि पैलेस्टाइन में ये जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। आज अफगानिस्तान का जो हिरात है उधर एक शिया मॉस्क जो है उसके अंदर एक गनमैन ने जो है घुस के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और यहां पे वर्शिपर्स जो है रात के 9 बजे की नमाज पढ़ रहे थे। ये अंदीशे का टाउन है गुजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिरात प्रोविंस में जिसके के अंदर 6 लोगों की इंक्लूडिंग इमाम जो है उसकी डेथ हुई है। जाहिर है कि इसके ऊपर जो है ईरान की जो गवर्नमेंट है ईरानियन गवर्नमेंट उसने बड़ा ज्यादा इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन शो किया है और बड़ा कंडेम इसको किया है। ये जो है जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी जब इसने अगस्त 2021 में पावर ली थी तो इन्होंने उसी वक्त कहा था कि हम रिलीजियस और एथनिक जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम बचाएंगे, लेकिन जिस दिन से ये आए हैं कोई भी ऐसा जो है काम नहीं हुआ कि जिसमें देखा जा सके कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और जो है यहां पर अभी तक तो किसी ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है लेकिन अफगान गवर्नमेंट का ख्याल है कि इसकी अंदर आईसिस खोरासान का हाथ हो सकता है जिसने कि पिछले दिनों में काफी ज्यादा जो है वो अटैक्स किए हैं और कॉन्स्टेंटली करते हैं इनके जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है एक टाउन हॉल कर रही है और उस टाउन हॉल में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। brampton.ca के ऊपर जाएं और उस टाउन हॉल की सारी वहां पे जो आपको डिटेल्स हैं वो मिलेंगी, आप उनको देखें और उनको आप फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान से आज जो सबसे बड़ी खबर है, इससे पहले कि हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी खबर देते, ये खबर इतनी बड़ी है कि मैंने सोचा कि इसको सबसे पहले जो है करना चाहिए। ये तो हम वैसे ही कहते हैं ना कि हर वक्त के जी पाकिस्तान ने क्या तीर मारा है। अच्छा, आज ये जो न्यूज है ये वाकई आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने वाकई तीर मारा है। मैं खुद भी बड़ा एतराज करती हूँ कि भाई आपने कोई वैक्सीन डेवलप की है, कोई आईफोन जैसा फोन बनाया, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी बनाई है, लेकिन पाकिस्तान हैज एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री टूडे थ्रू इट्स लूनर मिशन। लूनर मिशन आज लॉन्च किया जी पाकिस्तान ने अंडर ICUBEQ, और ये जो है फ्राइडे को ये जो है अपनी लॉन्च फॉर्मली अनाउंस करेंगे May 3, और ये इन्होंने आज अपना लॉन्च किया है लूनर मिशन चाइना के Chang'e 6 जो स्टेशन है हनेन के अंदर, वहां से। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ये जो सैटेलाइट है ICUBE यानी कि IQQ, ये डिजाइंड और डेवलप्ड है बाय देम इन कोलैबोरेशन विद चाइना शंघाई यूनिवर्सिटी SJTU। पाकिस्तान की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है स्पार्को, उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जो है एक बहुत बड़ी न्यूज है पाकिस्तान की तरफ से कि लूनर मिशन इन्होंने किया है। वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने जो बनाया है IQQ, ये इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं जो कि लूनर स्पेस की जो है वो तस्वीरें लेंगे। और ये इन्होंने वैसे ही जो है चाइना के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर लिया, इसकी बड़ी सक्सेसफुल इन्होंने पहले टेस्टिंग की थी और फिर इसको इंटेग्रेट किया था Chang'e 6 मिशन जो है, जो कि 6th है इन सीरीज ऑफ चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो अब इसका हिस्सा जो है पाकिस्तान भी है। वो कहते हैं जी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये इसको डेवलप किया है पाकिस्तान में, बल्कि इसका साइज बहुत कॉम